शरीर ही ना हो तो बिना शरीर वाला हो तो क्या स्पर्श करेगा उसको, उसको कुछ छू नहीं जाए, प्रिय और अप्रिय कुछ दूसरे छुएगा नहीं, से अलग होकर के आनंद स्वरूप होकर के निवास करेगा। इसलिए कहते हैं अकायम अप्रणम। अब देखो प्रण की बात कर रहे थे, प्रण के मन शरीर मन कोई घाव हो गया, शरीर में कहीं चोट लग गई, एक पीड़ा हो गई, तो ये सब शरीर में ही होते हैं। आत्मा अशरीरी है, वहां शरीर नहीं है, इसलिए उसमें व्रण ही नहीं, कोई भाव आत्मा में नहीं होता, आत्मा में पीड़ा भी नहीं होती। जहां आत्मी ज्ञानी होकर के आत्मा में स्थित है तो आत्मा में अनुभव करेगा, शरीर में भरी पीड़ा हो लेकिन आत्मा में पीड़ा नहीं होती, क्योंकि आत्मा में कोई शरीर नहीं है, आत्मा अशरीरी है। आत्मा अशरीरी है किस प्रकार से समझे समझने की कोशिश करें, आकाश का दृष्टांत लेकर, जैसे आकाश बिना शरीर का है बिना रूप का है और व्यापक है सर्वत्र, जिस प्रकार से आत्मा व्यापक है अनंत है वही अपना स्वरूप है और उसमें किसी प्रकार का प्रकार से ग्रहण नहीं हो सकता, भाव नहीं हो सकता, अवग्रहण और असनाविरम और असना स्नायु स्नायु से हो गया स्नावरम, जो स्नायु हो जैसे नशे हैं और नशे कहाँ होती है, शरीर होगा फिर नशे भी होगी, नगर का भी प्रभाव, लेकिन आत्मा में जब शरीर है ही नहीं तो उसमें नशे कहां से होंगी, और किसी की नस ब्लॉक हो जाए ब्लड से तो शरीर में हो जाए, आत्मा में जब शरीर है ही नहीं तो उसमें नशे है ही नहीं, वहां कहां शरीर ब्लड का ब्लॉक टॉपिक वहां कहां होगा, बिना शरीर का और वही अपना स्वरूप। तो कहते हैं अपना विरम वो बिना स्नायु का है, बिना उसमें कोई स्नायु बंद उसमें नहीं, और शुद्धम ये आत्मा तत्व शुद्ध है, शुद्ध है मैं आत्मा केवल आत्मा ही आत्मा तत्व एक हो, जिस वर एक तत्व है उसमें और कोई मंदा और सही नहीं कर सकते। जैसे आत्मा से जगत की उत्पत्ति हुई, हमें जगत में चाहे इतनी मंदता दिखाई दे, चाहे इतने दोष दिखाई दे, जितने चाहे इतने पाप होने दिखाई दे, लेकिन इनका प्रभाव आत्मा के ऊपर कुछ नहीं है। जैसे जल के ऊपर तरंग उत्पन्न हो और तरंग चाहे इतने भीषण दिखाई दे, तरंग चाहे इतना उपद्रव करने वाले दिखाई दे, तरंग चाहे जितना जहाजों को नावों को फलक फलक दे, कुछ भी करते तरंग, लेकिन हम जानते हैं कि तरंग जल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जल के ऊपर तरंग का क्या प्रभाव, जल के लिए तरंग है ही नहीं। बल्कि इस तरह से देखें तो जब हम अपनी आंखों से बंद होते हुए जगत को देखते हैं और गैस देखते हैं तब इसमें भला भला नहीं दिखाई देता है, गुण दोष भी दिखाई देते हैं, लेकिन जहां हम अपने आत्मस्वरूप पर पहुंच गए तो सारा जगत जो उसमें लुप्त हो गया समाप्त हो गया और समस्त गुण दोष भी जगत के जितने हैं उसमें जाकर के सब लोग नष्ट हो गए, उनका भी कोई स्थान नहीं रहेगा। अब देखिए दोबारा रामचंद्र कुमार का कि सुनम तात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण के है उभय न देखिए देखिए सो अभिवेक, सुनम तात माया कृत गुण और दोष अनेक, जितना नाना तो दिखाई देता है और उसमें भलाइयां भलाइयां दिखाई देती हैं, अच्छे बुरे सब दिखाई देते हैं, ये सब माया में है। जब तक माया में है, जब तक अज्ञान में है, नाना के रूप का हमारी दृष्टि जरूरी है, तभी तक इसमें भला भला भी दिखाई देता है। और गुण ये है उभय न देखिए, सबसे अच्छाई बात तो ये है कि हम गुण और दोष को न देखें, हम देखें आत्मा को परमात्मा को, एक अखंड तत्व देखें, उसमें न कोई गुण न कोई दोष न कोई भलाई न बुराई, उसमें न कहीं कोई किसी प्रकार का विकार कुछ, उसमें नहीं पाप न गुण उसमें नहीं, से उपराम देवी का आत्मतत्व शुद्ध आत्मतत्व है, इस प्रकार से आत्मा को देखो, यदि ये शुद्धम और अपाप विद्धम, अपाप विद्धम मैंने पाप भी इसको विद्ध नहीं कर सकते, मैंने पाप इसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकते, पाप का प्रभाव जीव तक है, जीव के बाद जहां हम अपने आत्मभाव में पहुंच गए तो वहां पाप का कोई प्रभाव नहीं, और जीव तक हम है तो जीव भी अज्ञान में, तो जब तक हम अज्ञान में हैं तब तक शुमार शुभ कर्म है और जब तक शुमार शुभ कर्म है तब तक जीव के लिए हुए कर्म का बंधन है और सुख दुख भी है, पाप भी है। जीव के लिए पाप पूर्ण सब है लेकिन आपके लिए पाप पूर्ण कुछ नहीं। इसलिए जीव और आत्मा के लक्षणों को अलग अलग करके जानना चाहिए। जीव वो है जो कि अपने मन बुद्धि में अहम भाव रखता है, प्राण में अहम भाव रखता है, शरीर में अहम भाव रखता है, वो जो जीव। लेकिन आत्मा तीनों शरीरों से अलग निर्विकार निर्लेप अतन आत्म तत्व जो है उसको शरीर से कोई मतलब नहीं, वो शुद्ध आत्म तत्व जो है उसके ऊपर पाप होने आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पहले कुछ लक्षणों को देखा जैसे अकायम अपरणम अस्नाविरम ये सब तो निषेध किया, तो शरीर आत्मा के जो दोष गुण है वो सब आत्मा में नहीं है। जो जरा बताते हैं जीव के जो दोष गुण है, जीव स्वास्थ्य कर्म करता है, पाप होने आदि करता है, तो वो भी आत्मा में उनका भी प्रभाव नहीं, उनसे भी अच्छी आत्मा है। इसलिए कहते हैं ये तो बता दिया कि आत्मा न शरीर है न जीव है, इनसे अलग होकर के आत्मा है। इसलिए इनसे धातन बात बोल। अब आत्मा स्वयं अपने आप में कैसा है अब उसको बता दें। कबीर मनीषी वो कवि है, गीता में भी इसी प्रकार के शब्दों को प्रयोग किया, वही बात यहाँ पर कबीर मनीषी ही ये आत्मा जो ही कवि है। कवि जो है सर्वद्रष्टा है, ये चेतना स्वरूप होने के कारण से प्रकाशक दृष्टा है, अंतिम दृष्टा सबका है और इसका दृष्टा कोई नहीं, बाकी सब दृश्य। आत्मा सबका दृष्टा, इसका दृष्टा कोई नहीं, आत्मा का दृष्टा आत्मा ही। कोई व्यक्ति कभी आत्मज्ञान हो जाता है, लोगों को आत्मदर्शन हो जाता है, तो आत्मदर्शन आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके आत्मभाव में स्थित होकर के ही आत्मदर्शन होता है। आत्मदर्शन को शरीर से आत्मदर्शन करो, क्योंकि शरीर को आत्मा दिखाई देने, आत्मा को आत्मा दिखाई देने के लिए ऐसा नहीं होता। आत्मा नहीं होती शिव दिखाई देने वाला नहीं, क्योंकि और कोई आत्मा का दृष्टा नहीं है, आत्मा स्वयं अपना दृष्टा है और सबका दृष्टा है। आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप करके अपनी सत्ता का अनुभव करता है कि मेरा अस्तित्व है और उसके में जितने भी नाम रूपों की उत्पत्ति होती है उनका भी प्रकाश यही है। आत्मा ही बुद्धि में स्थित होकर के द्वैत का ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय का भेद उत्पन्न करता है। आत्मा हो और बुद्धि हो, आत्मा की चेतना बुद्धि में आती तो बुद्धि में ज्ञाता और ज्ञेय, ज्ञाता बुद्धि बन गई और जो बुद्धि में जो बाह्य जगत का जो ज्ञान आता है वो ज्ञेय बन गया। तो मानसिक ज्ञान या भौतिक ज्ञान जो है उसमें ज्ञान का सही है, ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान, बुद्धि का पूजा ऐसे ही होता है उसमें एक प्रकार से ज्ञाता ज्ञान और ये का भेद रह करके ज्ञान करता रहते हैं। आत्म तत्व जब पहुंचते हैं तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है, लेकिन वहां एकत्व का ज्ञान है कि आत्मा ही सर्वत्र है और वही मैं हूं, इसके अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं। आत्मा ही ज्ञाता है, आत्मा ही ये है, आत्मा ही ज्ञान है। ये आत्मा की महिमा, उसका ज्ञान अन्य प्रकार का है। आप देखो दोनों को अलग अलग करके पहचानने का प्रयास करें, बुद्धि का ज्ञान किस प्रकार से है, आत्मा का ज्ञान किस प्रकार से है, ये बताने के लिए प्रयोग किया कबीर मनीषी। मनीषी को ये भी कह सकते हैं कि वही आत्म तत्व मन में स्थित होकर के, बुद्धि में स्थित होकर के जो चिंतन का कार्य करता है उसी आत्मा के कारण ही होता है। यदि आत्म तत्व न हो तो मन बुद्धि चिंतन नहीं कर सकते, विचार नहीं कर सकते। मन विचार स्वयं अपने आप में जाने, इनमें विचार करने की चिंतन करने की जो क्षमता है वो आत्मा की चेतना के कारण से ही है। मनीषी परिभू स्वयं हो, ये भी संतोष के लिए परिभू परिभ्रमण सर्वश्रेष्ठ वही है। अब जब हम देखें शरीर, शरीर से ज्यादा श्रेष्ठ प्राण, प्राण से श्रेष्ठ मन बुद्धि, इस प्रकार से आगे आगे बढ़ते बढ़ते आगे जब पहुंचते हैं तब पहुंचते हैं अंत में। आप जैसे गीता के अध्ययन में देखते हैं वहां पर भगवान बताते हैं देखो इंद्रियाणि पराण्या वर इंद्रिय ज्ञान पर मन मन तत्व परा बुद्धि और बुद्धि पर तत्व सहा अन्वयिता विनाशो तथा पड़ेगा। कहते देखो विषयों की अपेक्षा इंद्रिया श्रेष्ठ है, इंद्रियों से कर्म श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्ध से श्रेष्ठ बात वही आत्मा। देखो देखा भाई को सबसे श्रेष्ठ महान वही है। आत्मा से महान क्या है? कुछ नहीं। आत्मा ही स्वयं परमात्मा भी कर्म भी है। आत्मा से महान ऐसा नहीं कि आत्मा से महान कर्म है, वो आत्मा ही परमात्मा है, कर्म है, रूप है, दूसरी वस्तु नहीं। इसलिए ये सर्वोपरि वस्तु है और यही सब स्वरूप है, यही अपना स्वरूप है। तो परिभू और स्वयं भू, स्वयं भू मैंने ये कह सकते हो कि आत्मा कैसा है, अपने आप ही अपने रूप का अनुभव है स्वयं। अब स्वयं रूप माने, अब अगर ध्यान देंगे तो स्वयं रूप का ये निकलेगा कि आत्मा की कभी उत्पत्ति नहीं हुई, वो अनादि अनंत है। अगर कोई दृष्टांत ऐसा ले जैसे कहें देखो ये इस गिलास में जो जल है, ये जल कहां से आया? एक इस जल की उत्पत्ति जल से ही हुई है। तो इस बात का विश्लेषण करें क्या आदमी का कि मन इस जल की उत्पत्ति अपने आप से हुई है, मैंने अपने आप ही जल से ही जल की उत्पत्ति हुई है। जल की उत्पत्ति होने के पहले जल पहले ही था, उसी के लिए उत्पन्न हुआ। तो सीधी से कहने के बाद ये जल अनादि है, पहले भी था, उसी के लिए उत्पन्न हुआ और कोई नई बात नहीं। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु से उत्पन्न होती तो कार्य कारण संबंध हो जाता है, वो वस्तु जो नहीं होती है वो उत्पन्न होती है, और उसके उत्पन्न होने के पहले कारण उत्पन्न कोई दूसरी वस्तु विद्यमान होती है, वो कारण बनती है। उससे जो वस्तु उत्पन्न होती है वो बाद में आती है, तब कह दीजिए वस्तु उससे उत्पन्न हुई है। तो संसार के जितने भी रूप हैं वो तो सब आत्मा से उत्पन्न हुए, क्रमशः उत्पन्न हुए, लेकिन आत्म तत्व वो कहीं किसी अन्य से उत्पन्न नहीं हुआ है, वो स्वयं अपनी सत्ता से विद्यमान है, अनादि अनंत है, ये उसकी अपनी विलक्षणता है। इस जगत में जो हम देखते हैं अब शरीर जैसे, तो शरीर तो अनादि तो नहीं, शरीर उत्पत्ति हुई किसी वस्तु से, शरीर उत्पत्ति हुई, हम अन्य खाते हैं अन्य से शरीर बनता होता है, क्रम हो रहा है, पानी रूप आश्रित है, कंचों का आश्रित है, इस प्रकार देखते हैं उनसे उत्पत्ति हुई है, लेकिन आत्मा की उत्पत्ति कहीं किसी वस्तु से नहीं हुई है। आत्मा के उत्पन्न होने के पहले कोई और दूसरी वस्तु रही हो उससे आत्मा उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं, लेकिन आत्मा के बाद जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है तो आत्मा से उत्पन्न हुआ है। वो सब वस्तु में कोई भी वस्तु जगत में, जीवों में, प्राणियों में, मन में, बुद्धि में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो कि स्वयं अपने आप से उत्पन्न हो गई हो या अनादि अनंत हो, ये सब उसी आत्मा से उत्पन्न हुए। इसलिए कहते हैं ये आत्मा स्वयंभू है। अब स्वयंभू के साथ में ये बात पता रखिए, समस्त जगत समस्त प्राणी आत्मा से ही उत्पन्न है, इसलिए आत्मा समस्त जगत और समस्त प्राणियों का शासक है। अब ये बात करते हैं अंतिम पंक्ति जो है वो आत्मा सबका शासक है ये बताना चाहते हैं। अब उदाहरण रूप में देखें कहीं भी जैसे मिट्टी के घर की उत्पत्ति हुई, घर का रूप बना, तो घर का शासक मिट्टी, मिट्टी ही घर पर शासन कर। अब कैसे शासन कर रहे हैं ये आप देखो, मिट्टी ही उसको घर के रूप को सपोर्ट दिए हुए और घर बना हुआ है। मिट्टी यदि अपने आप को हटा ले घर में से तो घर का कोई अस्तित्व नहीं रह जाए। घर के अस्तित्व को का नियामक जैसे मिट्टी है, तरंग के अस्तित्व का नियामक जैसे जल है, आभूषण के अस्तित्व का नियामक जैसे स्वर्ण है, इसी प्रकार से ये आत्मा समस्त नाम रूपात्मक जगत और जीवों और प्राणियों का नियामक है, क्योंकि आभिष्ठान है उसी पर सब आश्रित है, इसीलिए उनका सबका नियामक। जहां कहीं भी किसी में कोई शक्ति है तो आत्मा की शक्ति है, जहां कहीं किसी को कोई ज्ञान है वो आत्मा के ज्ञान से ज्ञान है, जहां कहीं कोई अस्तित्व दिखाई देता है वो आत्मा के अस्तित्व से ही अस्तित्व है, जहां कहीं सुखानुभूति होती है वो आत्मा के अस्तित्व से ही सुखानुभूति है। इस प्रकार से क्योंकि ये आत्मा के लक्षण अस्तित्व आत्मा का लक्षण, बाकी सब अस्तित्व नहीं। अगर कहीं अस्तित्व दिखाई देता है तो आत्मा ही अस्तित्व, उस वस्तु को करके वो वस्तु भी अस्तित्ववान दिखाई देती है, आत्मा ही चेतना स्वरूप है। अगर कहीं अनित्र चेतना का अनुभव होता है तो आत्मा की चेतना से ही वो चेतन हो रहा है, आत्मा आनंद स्वरूप है, इसलिए आत्मा का आनंद ही कहीं व्यक्ति के मन बुद्धि में कहीं सुखानुभूति होती है तो उस सुखानुभूति का कारण आत्मा का आनंद ही है और उसका कारण सुख का कारण कोई दूसरा कोई नहीं। जब हम अपने अस्तित्व का अनुभव करते हैं मैं हूँ, तो इसके माने हम हमारा संबंध आत्मा से है, इसलिए मैं अपना अस्तित्व अनुभव कर रहा हूँ। जब हम ये अनुभव करते हैं हम चेतन स्वरूप है, तो इसके माने हम आत्मा से हमारा संबंध है, आत्मा चेतन है, इसलिए हम अपने आप को चेतन जान रहे हैं। और यदा कदाचित कभी हमें किसी प्रकार की सुखानुभूति होती है तो ये समझना चाहिए कि आत्मा का आनंद ही हम सुख के रूप में अनुभव कर रहे हैं। भ्रांत से भले ही हम समझे कि हमें सुख कहीं बाई जगत से कहीं वस्तु और व्यक्ति से प्राप्त हो रहा है, ये भ्रांति है, धोखा है। वास्तव में सुख है आत्मा का ही सुख, विषयों का सुख है। तो इसके के माने हम आत्मा से हमारा संबंध है, आत्मा चेतन है, इसलिए हम अपने आप को चेतन जान रहे हैं। और यदा कदाचित कभी हमें किसी प्रकार की सुखानुभूति होती है तो ये समझना चाहिए कि आत्मा का आनंद ही हम सुख के रूप में अनुभव कर रहे हैं। भ्रांत से भले ही हम समझे कि हमें सुख कहीं बाई जगत से कहीं वस्तु और व्यक्ति से प्राप्त हो रहा है, ये भ्रांति है, धोखा है। वास्तव में सुख है आत्मा का ही सुख, विषयों का सुख, नानात्व का सुख, लाभान का सुख, जो भी जितने प्रकार के सुख है वो संबंधता आत्मा के ही सुख है। वस्तुओं में लाभ हानि में, वस्तुओं के बनने बिगड़ने में, उनके आने जाने में कोई सुख नहीं। इस प्रकार से निश्चय करें तो सबका नियंता किस प्रकार से हुआ, समस्त जगत का और समस्त प्राणियों का नियंता आत्मा ही हुआ, इस भाव में कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि यथा सत्य तो अर्थात उसने सबका जो है कर्तव्य निर्धारण कर दिया है, अर्थान के मन कर्तव्य, उसी ने समस्त प्राणियों के कर्तव्यों का निर्धारण कर रखा है कि सबको ऐसा ऐसा करना चाहिए, इस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। तो आज ये कर्तव्य जल्दात्मा जिधात्मा जल्दा शाकती क्या समाभ्या, शाकती समाभ्या के मन है जो कि ये जो कि प्रजापति इत्यादि है, इन लोगों को सबको जो सृष्टि पहले से सबसे प्रारंभ हुई तो उन्हीं का पहले विधान बना दिया, प्रजापति में सबसे पहले उनको पहले की परमात्मा ने आत्मा ने आत्मा से प्रजापति हुए तो प्रजापति का कर्तव्य निर्धारण कर दिया, प्रजापति से और प्रजापति हुई तो प्रजापति ने उनका कर्तव्य निर्धारण किया। इस प्रकार जो परमात्मा ही सबका कर्तव्य का निर्धारण करने वाला और जो कर्तव्य से जो प्रकार से करते हैं उनके लिए अंधता आत्मा का आनंद सुख और विश्राम प्राप्त होता है, जो उस कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं उनको वो दंड पाते हैं, दुख पाते हैं, ये उनका दंड है। इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो आत्मा से और जगत के साथ है। आत्मा का वैसे तो आत्मा एक अखंड तत्व है, लेकिन उसके साथ साथ ये माया के द्वारा प्रतीत होने वाला प्राणियों का नाना, जगत का नाना, उसका भी विचार करते रहते हैं। ये सब नाना उसी पर आश्रित है और ये उसी के द्वारा ही समस्त शासित भी है, जिसका कि हम अपने अज्ञान की अवस्था में नाना को अनुभव करते हैं, उसी आत्मा के शासन में उसी के द्वारा संचालित है, उसी का अधिष्ठान तो उसी प्राप्ति को विद्यमान उसी से चल रहा है। इस प्रकार से जो ये इस श्लोक में आत्मा के स्वरूप का निर्धारण ये हो गया। बस इतने ही जो मुख्य श्लोक है, इन श्लोकों में आत्म तत्व का निरूपण ज्ञान के द्वारा होता है। ज्ञान के द्वारा मान यदि कोई व्यक्ति शुद्ध चित्त का है और इन श्लोकों को गुरु आचार्य के मुख से सुने तो शुद्धांतःकरण में हृदय में इन्हीं लक्षणों से युक्त आत्मा की अनुभूति व्यक्ति को हो सकती है। जैसे लक्षण बताए इन्हीं लक्षणों को अपने हृदय में देख तो उसे पता लगेगा कि हाँ ये तत्व इसका है, आत्मा है उतना है। कैसे दिखाई देगा अपने भीतर जब ये बता दिया कि ये मन बुद्धि से सबसे बड़ी है, एक अखंड तत्व है और बुद्धि जो है ये नानात्व का प्रतिभास कराती है। जब बुद्धि की वृत्तियां कार्य करती हैं तो मेरा तेरा करके ये भेद भाषित होने लगता है। जब श्रुतियां इस प्रकार से कहती हैं तो कुछ काल के लिए हम अपने मन और बुद्धि की वृत्तियों को शांत करते हैं, वो कार्य न करें। जब मन बुद्धि की वृत्तियां शांत हो जाएंगी तो जगत का नानात्व भी उपलब्ध नहीं होगा। वो जो बुद्धि जब कार्य करती है, मन करते हैं, तभी हमें दिखाई देता है ये पुष्प है, ये टेबल है, ये दीवारें हैं, ये सड़क है, ये व्यक्ति है, ये सब अनुभव होता है। जब मन फंक्शन करता है, बुद्धि फंक्शन करती है और शुद्धता को शांत देते हैं, जैसे गहरी हो गए तो मन को भी समझा नहीं करते, रिलैक्स हो गए। अब कमरे में चाहे चोर आ गए, चाहे बदमाश आ गए, चाहे उठा ले जाए, कुछ भी करे, कुछ पता नहीं चलता, मन नहीं जान पाता। क्यों नहीं जान पाता? कि मनुष्य में नहीं अपने शांत हो गया है, इसलिए पता नहीं चलता। तो जब मन और बुद्धि होते हैं तो तब नाना को पता चलता है, उधर की तरफ ध्यान जाता है। यदि हम मन और बुद्धि को शांत करते हैं, ये न हो तो जगत की प्रश्न नहीं होते। यदि कदाचित हम बैठ करके शांत होकर बैठे और जितना अभ्यास कर लें कि हम अपने मन और बुद्धि को शांत कर दें, निष्क्रिय कर दें, प्रतिहीन कर दें, तो आप क्या दिखाई देगा? तो आप मात्र आप ऐसा नहीं कर कुछ नहीं दिखाई देगा। हाँ, ये बात तो कह सकते हैं, कुछ नहीं दिखाई देगा उन्हें, जगत का नाना तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन कुछ न दिखाई देने वाली वस्तु का दृष्टा तस्वीर विद्यमान है, उसका लोप नहीं हो सकता। ये लोग उपनिषद में कहते हैं ऋषि कि दृष्टा का लोप कभी नहीं होता। वैदर में उपनिषद में याज्ञवल्क्य कहते हैं जो दृष्टा का लोप कभी नहीं होता, बुद्धि लोप हो जाए, मन का लोप हो जाए, लेकिन मन बुद्धि का जो प्रकाश आत्मा है वो दृष्टा है, उसका लोप कभी नहीं होता। वो आत्मा तो अपने आप को स्वयं प्रकाशित करता हुआ फिर भी विद्यमान रहेगा रहेगा, और उस समय ये पता लग जाएगा जो कुछ भी अनुभव होगा वो आत्मा का ही अनुभव। लेकिन मन बुद्धि कार्य करते रहते हैं तो वही आत्मा का चैतन्य उसकी सत्ता मन बुद्धि से कंटेनमेंट होकर के विकृत होकर के कुछ अनुभूति का देगी, कोई उनकी अनुभूति हो जाएगी। लेकिन मन बुद्धि शांत होंगे तो फिर नानात्व का बोध नहीं होगा, केवल आत्मा का ही बोध होगा। तो यदि कोई व्यक्ति का मन बुद्धि इतने शुद्ध शांत हो तो अपने आदेश दे और मन बुद्धि शांत हो जाए तो सत्कार उन्होंने रख ले अपने हृदय में कि देखो आप चेतना मात्र सर्वत्र विद्यमान रहेगी, ये अनंत चेतना है, ये स्वयं अपनी सत्ता से विद्यमान है। फिर देर नहीं कर मैं थोड़ा सा व्यक्ति को, लेकिन बस यही है कि समस्या क्या आती है कि यदि रजोगुण हुआ उसकी अधिकता हुई तो रजोगुण मन बुद्धि में इतना विक्षेप उत्पन्न करते हैं कि हम मन बुद्धि को शांत करना चाहें तो शांत नहीं प्रयास करने पर भी नहीं। जब आ जाती है व्यक्ति को, इसलिए पहले तैयारी करनी पड़ती है, धीरे धीरे करके अभ्यास करके अपने आप में सद्गुण ला दे। जब सद्गुण लाए और मन बुद्धि को शांत करना चाहे तो कुछ काम करके लिए सब शांत हो जाए, और जितनी देर शांत रहेंगे उतनी देर सर्वप्रज्ञात अपने आप में स्वरूप की अनुभूति, आत्मा की भी अनुभूति होगी, आत्मा के लक्षणों की भी अनुभूति होगी। ये चेतना, ये आत्मा अपनी सत्ता से विद्यमान है, शांत स्वरूप है, अनादि आनंद है, पूर्ण है, चेतना स्वरूप है, निर्विकार है, असंग है, सुख दुखादि से रहित है, पूर्ण है। ये आत्मा आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, विश्राम स्वरूप है, ये संरक्षण आत्मा है, व्यक्ति अपने आप आत्मा में ही स्थित होकर के अनुभव कर सकता है। ये इसको भाव को ध्यान में रखकर के गीता श्लोक बोल दिए। अब आगे वो दूसरा प्रश्न प्रारंभ होता है, आगे देखेंगे कि तीन तीन श्लोकों के दो सेट आगे आते हैं, छह श्लोक आते हैं। उन छह श्लोकों में एक बार फिर सावधान करने के लिए कुछ बातें कही हैं, जिससे कि व्यक्ति सावधान होकर के अपने आत्मस्वरूप तक पहुंच सके। उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन हैं, उनका उल्लेख करते हैं। हालांकि उनका भी बात सरल से ही है, लेकिन ऋषियों ने बड़े ही विचित्र ढंग से उनको बोला है। अपने आप उन श्लोकों को पढ़ेंगे तो देखेंगे तो वो जो है उलझन उलझन से उमड़ने लगती है, कहीं कुछ उसका कह दिया, कहीं कुछ कह दिया, समझना आसान नहीं लगेगा। क्या हम देखेंगे उनका तात्पर्य क्या है, ऋषियों ने ऐसी बातें पूर्ण बात क्यों कही है, वो भी बात समझना है। और उस छह श्लोकों के बाद उसके बाद में फिर वो वासना की बात है। तो अभी दो दिन शेष हैं, तीन दिन शेष हैं, तो उसमें एक अंतर जो देखेंगे कि कई लोगों के साथ जो बोलते हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे, और फिर शेष दो दिन उपासना क्या है उसको देखेंगे। उपासना के द्वारा भी इस आत्मदर्शन की प्राप्ति हो जाती है। जिन लोगों का चित्त अत्यधिक शुद्ध नहीं है और वो सत्कार ही जैसा आत्मा का स्वरूप बताया वैसे ही आत्मा के दर्शन हो नहीं जाते हैं, उपलब्ध नहीं होता है, तो उन लोगों के ऊपर भी ऋषियों ने कृपा की है और उपाय निकाला है तो वे लोग तो उपासना करना। इसके बाद यहाँ से दो मार्ग हो जाते हैं, ज्ञान के द्वारा परमात्म की सिद्धि और उपासना और भक्ति के द्वारा परमात्म की सिद्धि। तो उपासना वाला मार्ग शुरू किया जाता है ज्ञान का मार्ग बता दिया गया आगे आत्मतत्व की प्राप्ति होती है, उपासना और भक्ति के द्वारा कैसे उसकी प्राप्ति होती है ये पंडित के श्लोकों में